संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपना समय सार का गाथा नंबर 194 चल रही थी, उसमें गुरुदेव जी का कोटेशन अपन कल पढ़ रहे थे, आधे से ज्यादा पढ़ लिया था, जो बाकी रह गया था उसे आपसे पढ़कर आने के लिए कहा था, आशा है आपने ऐसा किया होगा। उसमें जो बात समझाई गई है वो बात पहले आ गई है, और जो बात नहीं आई है वो अगली कलश के अर्थ में आने वाली है, इसलिए अब उसके पे ज्यादा समय लगाने की अपन को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न है कि स्वयं भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी उस संबंधी राग का सद्भाव नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती। अब ये बात समझ में जो उन्होंने समझाई है उसमें कह समझ में नहीं आती, तो और समझाओ, ऐसे ही अर्थ हो गया ना, इसका मतलब वो पिस्ती पेशन है। यदि आपकी समझ में आ गई हो तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, और उन्होंने जिसके लिए जो आगे उदाहरण दिए हैं वे उदाहरण अगला पेज खोलो तो इस पर बनारसी दास के छंद के अनुवाद में आए हैं, तो वो वहां आने वाले हैं क्या है? इसलिए वो उदाहरण जो दिए हैं वो सब यहां आने वाले हैं, इसका बस निष्कर्ष रह गया। देखो इसमें एक बात और समझने की है कि जब भी ये भय सामने लाया जाता है आता है कि यदि हम ऐसे कहेंगे तो लोग भोग भोगने में स्वच्छंद हो जाएंगे, और उसकी वजह से ऐसा कुछ कह दिया जाता है कि भाई वो तो ऐसी बात थोड़ी है, वो तो भोगों में लोग न भोगे इसके लिए हमने ऐसा कह दिया था, तो फिर वो इतनी मेहनत पे फिर पानी फिर जाता है। देखो पढ़ो आप 149 पेज पर, गुरुदेव श्री ने भी वो किया कि वैसे देखा जाए तो भोग तो बंधन के ही कारण है, पर यहां तो ज्ञानी के अंतर्दृष्टि के जोर की मुख्यता से कथन है ना। अब फिर इस बात को पकड़ करके जो मुमुक्षु क्रियाकांडी हैं वे फिर वही की वही वही की वही जगह पर पहुंच जाते हैं क्या? अब वो तो किसी ने प्रश्न उठा दिया, इसलिए गुरुदेव ने कहा, यदि कोई प्रश्न नहीं उठाता सामने तो वो गुरुदेव कहते भी नहीं, और ऐसे प्रश्न उठाने वाले जो कौन लोग थे मुझे मालूम है, उनके सामने बैठे रहते थे और वो ऐसा बोला करते थे, फिर तो लोग स्वच्छंद हो जाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल देते थे, और फिर गुरुदेव पूरा का पूरा फिर उस पे लाइन पे चली जाती थी। कई जगह हम उनसे निवेदन करते थे कि भाई साहब आप क्यों इसको मोड़ देते हो, जो बात एक फ्लो में चली आ रही है गुरुदेव श्री की उसे उन्हें शांति से कहने दो, लेकिन उनको तो बस आदत पड़ी थी और वो बराबर करते रहते थे। वो साधारण लोग नहीं थे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो ये चलता रहता था, हम यही कह सकते हैं कि ये किसने कहा होगा हम जानते हैं। देखो अब इससे क्या तकलीफ है कि इन्हें लिख दिया ना भोग तो बंधन के ही कारण है, अब भोग की जो क्रिया है वो परद्रव्य की क्रिया है ना, वो बंध की कारण हो सकती है ना मोक्ष की कारण। अब इसमें ऐसा लगता है कि भाई वे तो बंधन के ही तो कारण है, लेकिन वो किसी अपेक्षा इसके लिए कह दिया है, इसके लिए कह दिया है, तो ये बात असली जो बात है वो तो कमजोर हो गई। तो फिर पालन तो करें ना, तो संयम से तो रहना चाहिए ना, फिर ये तो करना चाहिए ना, ये क्रिया तो नहीं करना चाहिए ना, तो हाँ नहीं करना चाहिए, तो हो गया तुम्हारा काम, बस तुम्हें तो इसके लिए बैठे थे। लेकिन इसका जवाब असलियत में क्या है, गुरुदेव ने कम से कम 100 में 99 जगह दिया है कि तू कर ही नहीं सकता है, हम ये समझा रहे, और तुम करना तो चाहिए ना, करना तो चाहिए ना करके हम जब कर ही नहीं सकता है, इस पर विचार कर लेना कि उसको तू करता नहीं है तो तुम नहीं करता कैसे बनेगा। किसी की तुमने आज तक कुछ किया हो तो कल से नहीं करेगा, ये बात समझ में आती है। हम समझा रहे हैं कि एक दूसरे का करता नहीं है, अगर करता नहीं है तो भोगता नहीं है, भोगता नहीं है तो उस द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य को बंधन क्यों हो। ये न्याय है, तो न्याय संगत बात को तो ठीक है छोड़ के तो वहां बैठ जाए। अरे तेरे से वो उसको धर्म मानना छोड़ने को कह रहे हैं, उसको तू छोड़ नहीं सकता क्योंकि तू त्यागोपादान शून्य है, वो तो तेरे हाथ में है नहीं। जैसे उस डॉक्टर से कहते हैं ना, डॉक्टर फिर कहते हो तुम घी मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये तुमको बहुत तकलीफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, नहीं वो थोड़ा तो ले सकते हैं ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ा लेने चाहिए क्योंकि उसकी कमी हो जाने से भी गड़बड़ होती है, थोड़ा तो ले सकते हैं बस खत्म, फिर उसको उतना ही लेना है जितना लेता है रोजाना, वो उसको ही कल से थोड़ा कहने लगेगा। अब वास्तव में वो बात सफेद झूठ है, थोड़ा भी नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए, दो चम्मच तो चाहिए ना, चाय के चम्मच के बराबर चिकनाई 24 घंटे में, कहां चाहिए दो चम्मच, तो हम दो ही चम्मच ही तो बात कर रहे हैं। अरे भाई वो गेहूं में घी होता है, मैंने गेहूं में भी चिकनाई होती है, चावल में भी चिकनाई होती है, दालों में भी चिकनाई होती है, और जो तुम्हें दो चम्मच चाहिए वो जो तुम्हारा खाना है ना उस सब में मिल जाता है, केले में भी होती है। क्या समझे ना, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं, तुम्हें खाना बिल्कुल नहीं है, उस तरफ देखना नहीं है, उसे सूंघना नहीं है, डॉक्टर ये समझाता है। और ये थोड़ा 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 तो हमने सुना कोई कहता थोड़ा दो चम्मच मरता है, फिर जो कुछ होता है तकलीफ भोगनी पड़ती है बस ना, क्या करें। ऐसे ही इस पे करें तो तुझसे ये कौन कह रहा है कि तुम अभक्ष का भक्षण शुरू कर दे, तुझसे ये कौन कह रहा है कि तू ब्रह्मचर्य से रह रहा है तो वैसे भोग भोगने लग जा, कौन कह रहा है ये। लेकिन तू महान बैठा है, पहाड़ पर चढ़ गया है, मैं तो ब्रह्मचारी कहते कैसे पहले ये तो समय, ब्रह्मचारी धर्म में लिखा ना है, तो अपना दसवां धर्म धर्म के दस लक्षण में हमने ये देह की क्रिया से उसे जोड़ दिया है, और उसको रोध होकर किसी तरीके से पार पार के और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। क्या समझे ना, ब्रह्मचारी कहते कैसे हैं वैसे, ये तो समझ तू, वो तेरा वास्तव में है, पूजन में भी दंड राज ने तो डाल दिया क्या, शील बाढ़ नव राख और ब्रह्म भाव अंतर लखो, अब तेरे दो ही नहीं है। कैसे नहीं है दो ही, आत्मा तो की बात ही से तो पसंद नहीं आती, आत्मा का तो रस ही नहीं है, आत्मा सारी जिंदगी दुनिया बाहर के क्रमों में बर्बाद कर रहा है, समझ में आई ना। ये तो अन्ना जी ने किसी से कहा था कि देखो आप अकेले यही इसमें नहीं उलझा करें, तो एक आध आप क्लास भी लिया करें, मान लो आप प्रवचन को नहीं मिलता है, तांसारी को नहीं मिल पाता है, तो क्लास लो आप, पढ़ाओ किसी न किसी को, ऐसा मतलब कुछ थोड़ा ज्ञान के यज्ञ में आप, अरे आप समझते नहीं, ये तो पंडितों का काम है, ये ब्रह्मचारियों का काम थोड़ी पढ़ना पढ़ाना, ये उनने सुनाया था मेरे को अन्ना जी ने। अब तूने अपने काम में ही शामिल नहीं किया, स्वाध्याय को अपने काम में शामिल नहीं किया, ये पढ़ने पढ़ाने पंडित का बड़ी मालूम है क्या, मतलब जो जो पैसे से लेकर के पढ़ाता है टीचर, और वो उसका अपमान हो जाएगा, वो ब्रह्मचारी पढ़ाएगा ना, तो तुम नहीं लेना पैसा, कौन तेरे को कहता है पैसा लेके पढ़ा, क्यों, लेकिन उन्हें पढ़ाने को ही है समझ लिया है। देखो ज्यादा दूर की बातें नहीं, आसपास की बातें हैं, दूर की बातों से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, कि ये ज्ञान इस समय सार पढ़ने पढ़ाने को तो अपना काम में नहीं गिना, कैसे ब्रह्मचारी है, ब्रह्म माने आत्मा क्या होता है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है इसको समझना समझाना तेरा काम नहीं है, अगर तूने समझने कोई काम नहीं माना तो होने की बात तो कहां से आएगी बस खत्म। अब वो सच्चा स्वरूप सामने रखते हैं तो तेरे को ये लगता है ये हमारे ब्रह्मचर्य की महिमा घट रही है, तो ये बुद्धिपूर्वक हमारे ब्रह्मचर्य की महिमा घटा रहे हैं। ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य की महिमा हम क्यों घटाएं, तुम्हारे हैं क्या ब्रह्मचर्य जो तुम्हारी महिमा घटाएं, क्या? तो ये जो मतलब ये जो आ जाता है ये कभी कभी बहुत तकलीफ देने वाला हो जाता है। ये देखा जाए तो भोग बंधन के कारण है, बंधन के ही कारण है। यहां तो ज्ञानी एक वो क्या है उसका अर्थ है कि वो उसका इसमें समय सार में है वो चीज, वो बता देता हूं मैं अभी आप लोगों को, क्योंकि वो भोग की क्रिया भोग के भाव के बिना संभव नहीं है, इसलिए उस भोग के भाव का निषेध करने के लिए क्रिया का माध्यम से निषेध किया जाता है। बस इतनी सी बात है, उसे तुम करता हो ऐसा नहीं है। देखो एक छंद आएगा, एक अभी आएगा, एक कलश आएगा, कब आता है आगे पीछे, भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध होता है, इसलिए आएगा कलश में आने वाली है। अंबेडकर के सामने भी समस्या थी कि भोगने के भाव से बंध होता है, भोगने की क्रिया से नहीं होता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिनको बंध हुआ है और जिनको नहीं हुआ है, जिनके भोग की क्रिया नहीं है और उनके बंध नहीं हुआ, और जिनकी भोग की क्रिया है उनको बंध हुआ, जरा समझना। हम नक्की कर लेते भाई उससे नहीं हुआ उससे हुआ, इसका मतलब उसी से हुआ। तो वो कहते हैं कि जिनको वो बंध हुआ है वो भी भोग की क्रिया से, भोग माने पांच इंद्रियों के भोग, अकेले एक भोग से मत लगाना, दिक्कत है बार बार कितनी दफे कहेंगे ये बात आपसे, भोग भोगना भोगना मतलब समझे, भोगना माने क्या, गर्मी है पंखा क्यों नहीं चलाया, ये भोगने का भाव। चलो बाहर धूप में बैठते हैं, इसका नाम भोगने का भाव, इसे तुम गिनते ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं कुछ धर्म अधर्म हुआ, क्यों? भोग सब जाते ही दोनों में कहां कहां पहुंच जाता है, समझ आए ना? वो कहते हैं जिसको वो बंद हुआ है वो भी भोगने की क्रिया से नहीं हुआ, भाव से हुआ है, और जिसको नहीं हुआ उसको भी क्रिया नहीं की इसलिए नहीं हुआ, जो बात नहीं है, क्यों? कि क्रिया करने वाले के भी नहीं होता है। तो वो कहते हैं ऐसा दस ठीक है, अभी हमें अच्छा समझ में आ गया, अब क्रिया का त्याग नहीं जरूरत नहीं है, मेरा के लिए भाव से छोड़ दें। इस लेन पर उतरता है ना वो अज्ञानी, तो उससे कहते हैं कि भाव के बिना क्रिया संभव ही नहीं है, है ना? इसलिए हम तो भाव के त्याग की बात कहेंगे जो सच्ची बात है, उसके साथ ऑटोमेटिक में क्रिया आ गई क्योंकि वो उसके साथ अपना भावी है, तो फिर नहीं करना चाहिए ना, फिर लौट के वहीं कमाई आ जाता है। तो जो हमने तर्क दी है, युक्ति दी है, जो समझाया है, वो उसको समझ में नहीं कहता, दिक्कत तो इतनी होगी। अब मेरी समझ में नहीं आता कभी कभी तो सचमुच मुझे कि लोग इतनी स्थूल बुद्धि हैं, लगता नहीं कि इतने स्थूल बुद्धि हैं जिनके सौ सौ हजार हजार फोन नंबर जिन्हें याद हैं, पर ये दुनिया की इतनी इतनी बारीक बारीक बातें हैं जिनके ख्याल में आ जाती हैं, समझ रहे हैं ना? बुक उनकी समझ में कैसे नहीं आता हुआ, कहीं ना कहीं बस इतना ही है। लगता है टोडोमल जी के शब्दों में कि इसका भी अनंत संसार बाकी है, इसे समझना नहीं है ये बातें, तो कोई ना कोई भय दिखाकर हमें हमारे जबान से वो बात निकलती है तो इसे बंद करना चाहता, मैंने इतनी बात है उसे, क्योंकि यदि इसे असली स्वरूप समझाया जाएगा तो मैं आपको एक बात कहता हूं, बहुत मार्मिक है। बाबू भाई थे ना अपने गुरुदेव की वाणी के प्रचार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो योगदान कैसा था मैं आपको बताता हूं कि वो बहुत ही शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले थे। जैसे रात्रि में माथे पर बाम भी नहीं लगाना, क्योंकि रात्रि भोजन का लेप का दोष लगेगा। ऐसा ऐसा मतलब बहुत बाहर की चीजें पालते थे, जो अभी बता रहे थे ना दीपक भाई, सच्ची बातें बता रहे थे, मैंने बहुत ध्यान से सुन रहा था, आप समझे ना। तो उनकी वजह से सारे देश में लोग तो ये आरोप लगाते थे कि ये सोने वाले भ्रष्ट लोग हैं और ये तो धर्म, इसमें तो धर्म मानते ही नहीं है, ये तो बस आत्मा आत्मा करो उससे धर्म हो जाता है। तो ये जो लोग उन्होंने प्रचार किया था और वो जाते थे और उनकी जो ऐसी प्रवृत्ति थी तो उसे देख देख करके लोग कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग अपने दिगंबर समाज के लोग सोनगढ़ तरफ आकर्षित हुए उनकी उस प्रवृत्ति को देखकर। मुझे याद है जब वो भाषण में कहते थे मैं तो रात को बम तक नहीं लगाता तो तालियां बज जाती थी और हम कितनी बढ़िया मरम की बात निकाल निकाल के गए, कोई तालियां बजाते नहीं था क्या वे अपने साथ एक पेटी ले जाते थे, उस पेटी में एक धोती रखते थे और जब वे लेटन जाते थे तो वो अपने एक औरतों जैसे एक कपड़े बदल के, अभी तो अब तो औरतों में भी नहीं रहा, पुराने जमाने में होता था लेटरिन जाती थी, लेटरिन की धोती अलग होती थी, लेटरिन का लोटा धोती सब अलग होती थी, अभी मैं बुंदेलखंड के इंटीरियर में होती हूँ क्यों। तो वो बाबू भाई भी उसको निकल के वो पहन करके फिर लेटरिन जाते थे, फिर आकर के फिर अपनी वो धोती पहनते थे। बस वो पेटी देख देख के, सड़ी सड़ी गली पेटी देख देख के लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे। और एक और गुण था उनमें कि जब भक्ति का मौका आता था तो वे नाचते थे, तो इससे भी लोग बहुत प्रभावित होते। अब ये गुण है कि दुर्गुण है, मेरे में तो ये बिल्कुल है नहीं है, गुण हो तो बेबी नहीं है, दुर्गुण हो तो भी दे रही है। मेरे को जबरदस्ती शांता बहन ने भी पकड़ पकड़ के इसी हॉल में नचाने की कोशिश की और मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं ना वो, तो मेरे पैर तो कभी मटके नहीं, तो हाथ के का दबे ऐसे करके फिर मैं रख दी जाने खुदा। और मैं उनसे कहता था ये क्या है, ये विद्वानों को शोभा देता है, ये त्यागी तपस्वियों को शोभा देता है, ये ब्रह्मचारियों को शोभा देता है, ये स्वधर्म नाचा वो ब्रह्मचारी था क्यों, ऐसा कहता था भाषण में भी सब भी। अब उसी वजह से सारा देश वो उनसे आकर्षित होता था, वही वही बात है उनकी जो बाहर की जो सब बातें समझ गए ना। अब अपने वही भक्ति ना जो वास्तव में भक्ति है ना वो क्रियाकांड जो ना वास्तव में धर्म है, तो मैंने कहा कि इसमें कहां गुरुदेव की बात जनता तक पहुंची, ये तो उसी जनता की बात आपने अपना ली तो वो तो अपनी बात तक हो रहा है और उससे वो अपने अज्ञान को सुरक्षित कर लेता है। भाई साहब यदि आप कोई जीवन में आपकी शुद्ध क्रिया है और शुभ भाव है, शुभ क्रिया और शुभ भाव है, तो ये गहराई से समझकर कि इससे रंच मात्र भी बंध मोक्ष का संबंध नहीं है और फिर आपकी वैसी की वैसी कायम रह जाए तो समझना कि तुमने सही समझा है। तो वो तुम्हारी सही थी, अरे हम कह देंगे कह देंगे भ्रष्ट हो जाओ, कह देंगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, लोग छोड़ देंगे छोड़ देंगे, छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा, छोड़ देंगे तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। टोटे मुझे ने तो कितना साफ शब्दों में लिख दिया, स्वर्ग अधिक नहीं होती, नरक अधिक होती, रहेगा तो संसार का संसार में। क्या लिखा, स्वर्ग अधिक नहीं होगी ना, लोगों को उतना ही बुरा लगा ये बात, कितनी क्या करे टोटे मुझे फेंक नहीं, स्वर्ग नहीं होगा नरक हो, दोनों एक ही है क्यों, राहुल बजाज जैसा है क्या है राहुल बजाज जैसा क्या छापा जी, किंग फिशर मरता है तो मर जाने दो ना, गवर्नमेंट उसे सहायता क्यों देती है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो मर रहा है उसे मर ना जाने देना चाहिए। ऐसा भाषण दिया, सब अखबारों में आया, क्या कैसा लगा होगा तुम्हें? उसमें यदि खत्म हो जाएगा, बंद हो गई सब फ्लाइटें, बंद हो जाएंगी कि मर जाने दो ना, ऐसा ऐसा बोले अखबार में हेडिंग आया था, मरता है तो मर जाने दो ना। अब अपन को बहुत बुरा लगता है सारी जगत को, लेकिन उसने प्रधानमंत्री को सचेत किया कि आप ऐसे बचाने लगोगे तो तुम्हारा सारा बजट इसमें ही चला जाएगा। क्या ये खुले बाजार का मतलब क्या होता है? जब आपने खुले बाजार का सिद्धांत अपनाया है तो वो अपनी ताकत से बचे और अपनी ताकत से जाए। क्या उसने ऐसा क्यों किया? दूसरों को गिराने के लिए, कीमतें कम करने के लिए, बहुत कम कीमतें कर दी किराए की, तो खुद गड्ढे में गिर गया, दूसरे भी बेचारों को उन्हें भी कम करने पड़ी, उन्हें भी बहुत घाटा उठाया, तो इसने तो सत्यानाश किया है। ये घाटा उठाकर ले जाने की जरूरत क्या थी? यदि सारे एयरलाइन वाले उससे कम नहीं करते जो उनको कम से कम उनको खर्चा आता है, तो आज किसी को कैसे मौका आता है? तो जिसने सबको भ्रष्ट करने की कोशिश की उसको आप खड़ा करने की बात करते हो, सीधी सच्ची बात तो ये है ना, फिर करेगा वो भ्रष्ट। तो उसने एयर इंडिया को भी या तो बंद कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, गवर्नमेंट क्यों उसमें खाता क्यों उठाए? तुम घाटा उठा रहे, हम उससे कंपटीशन कैसे करेंगे? अब उन्होंने तो व्यापार के हिसाब से वो बिल्कुल सही बात है। बाजार में सब्जी बेचने वाले बैठे हैं 25 आदमी, अब एक से कहो कि हम तुम्हारे लिए तो जितनी सब्जी बेचोगे है ना, जितने आलू बेचोगे उन आलुओं पर 10 रुपए किलो गवर्नमेंट देगी, तो वो 10 रुपए किलो कम कम भाव के में बेचेगा, तुम उस सब्सिडी दोगे तो बाकी आलू वाले नहीं मर जाएंगे, उनकी बेचेगा ही नहीं क्यों? अरे उसे आलू बेचना है तो बाजार में जो सब लोग लाए हैं बाजार से खरीद के उस भाव में बेचना दो उसे। बैंक से जो कर्जा मिलता है नियम के अनुसार व्यापार के लिए, वो लेना दो उसे, कौन मना करता उसे दो। लेकिन ये ऐसे हम दे देंगे करोड़ों रुपया वैसे ही शायद ये गलत है, ऐसी हम जैसे हम धर्म में छूट देने के हमारे बाप को अधिकार हो, तो देह की क्रिया में यदि बंद मोक्ष नहीं है तो नहीं है, ऐसा कहेंगे तो लोग तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम हमारे हाथ में थोड़ा है कि हम शास्त्र के हिसाब से कहें कि उसके हिसाब से करें। हमारी जिम्मेवारी वफादारी किसके प्रति है बोलो? शास्त्र के प्रति है कि उन्हें अज्ञानियों के प्रति कि जो ऐसा कहने से भ्रष्ट हो जाएंगे, कह देंगे हो जाए तो लोग कहीं बच्चा भ्रष्ट होने की बात करते हैं। अरे क्या कह, वो कभी कभी कोई टोटामल जी भी कह सकते हैं, कुंद कुंद भी कह सकते हैं, कितना कितना कहें, कभी तो किसी को थोड़ा गोस आ जाए क्यों? जब क्या नाम वो है, वो गांधी को गुस्सा आ सकता है तो पंडित को भी आ सकता है। मेरा मतलब समझो ना क्या कह रहा हूं, मतलब हम लौट के जो सामने वाले कहलवाना चाहते हैं वो भूल के भी नहीं, हमारी तो जय जयकार हो जाएगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि बहुत लोगों तक गुरुदेव की बात पहुंच गई बाबू भाई के प्रयासों से, ये बात जितनी सत्य है उसमें से कुछ सत्य इतनी भी तो हो सकती है कि बहुत से मुमुक्षुओं में जबरदस्ती का क्रियाकांड घुस गया, वो अज्ञान घुस गया। क्यों? समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं, वो करना तो चाहिए, करना तो चाहिए, करना चाहिए। अरे चाहिए क्या? वो गुरुदेव की भाषा रखो ना, ये होता तो है ही, नियम से होता है, अपना भावी है, होगा ही होगा ही होगा ही होगा ही, क्यों है? जब नीचे सबसे नीचे फिर गुरुदेव को भी लिखना पड़ा, तीन लाइनें पढ़ के आगे बढ़ता हूं। भाई ऐसा कथन सुनकर यदि कोई स्वच्छंदी होता है तो वह निश्चय ही मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसने जिनवाणी के इस नए विभाग से किए गए कथन का सत्य अर्थ ग्रहण नहीं किया। हमने जो नए विभाग से अर्थ किया था, हमने जो कह दी इतनी बात, वो तो व्यवहार नए से कह दी है, उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। बस कदम इस प्रकार इस गाथा और उसकी टीका में यही कहा गया है कि भोग और वेदन समान होने पर भी देखो मिथ्या दृष्टि को बंद और सम्यक दृष्टि के निद्रा होती है। यह सब महिमा सम्यक दृष्टि के आत्मज्ञान एवं तदजन्य वैराग्य की ही है। ये देखो तीन लाइन में पूरे कथन का निष्कर्ष आ गया और अगली गाथाओं की भूमिका आ गई। क्या है इसी के बाद जो कलश आता है ना, अब आगामी कलश में कहते हैं कि यह ज्ञान और वैराग्य की ही महिमा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से बनता नहीं है। कलश मूलता इस प्रकार है। एक बात ध्यान के रखो, बार बार कह रहे भोगता हुआ भी ज्ञानी पकड़ा है, नहीं भोगता हुआ ज्ञानी नहीं पकड़ा है, क्योंकि ज्ञानी चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवान तक होते हैं। तो उनमें जितने भोगने वाले ज्ञानी हैं उससे ज्यादा नहीं भोगने वाले ज्ञानी हैं। क्यों है क्या नहीं कैसे बताओ भाई? तो चौथे गुणस्थान वाले तो भोगने वाले हुए, अब पांच में छठ में सात में फिर आगे बढ़ के पूरे तेरह में तक और फिर मोक्ष में, ये सब नहीं भोगने वाले ज्ञानी हैं। अब यहां वो नहीं भोगने वाले ज्ञानियों को नहीं समझा रहे, ये सिद्धों का स्वरूप उन्हें बंद नहीं होता ये नहीं समझा रहे, ये किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। समस्या तो चक्रवर्ती भरत को ज्ञानी मानने में लोगों को है, सिद्ध भगवान को ज्ञानी मानने में थोड़ी किसी को लोगों को समस्या है। क्यों तो उसको क्यों छोड़ देते हो आज, वो लाइन पकड़ गया हो क्या, क्या समझाने के लिए हम बैठे हैं? देखो तद ज्ञान सैव सामर्थ्यम वैराग सैव च बाकिल देखो कर्म भुंजानोपि न बद्धते, कर्म को भोगते हुए भी नहीं बनते हैं। तो ये ज्ञान और वैराग्य की महिमा है। अब एक किसके ज्ञान और किसके वैराग्य की महिमा होगी? क्यों जो नहीं भोगते उनके वैराग्य की महिमा होगी। छात्रा जी माने जो भोग रहे उनका जो ज्ञान और वैराग्य है उसकी महिमा है कि वो बनते नहीं है। तब क्या उनके तो है ही नहीं, उनके तो है ही नहीं, उनके तो है ही नहीं। आप समझिए ना, हम इनको इनको सिर उठाने वालों को वैरागी मान लिया है, हैं? और बाकी को उन्हें सब वैरागी मान लिया है। उसके भरत चक्रवर्ती के तो वैराग है ही नहीं। जब हमारे कवि चिल्ला चिल्ला के कह गए भरत जी घर ही में वैरागी, भरत जी घर ही में वैरागी, वो सारे वैभव का वर्णन किया पर कवि ने इतने क्या इतने करोर 18 करोर हैं घोड़े जिनके 84 लख हाथी, ऐसे भरत जी घर ही में 96,000 पत्नियां हैं जिनकी, और वह लिखा है इतने करोर गांव हैं इतने करोर नगर हैं, और यहां तक लिखा इतने करोर अनाज उठता है कितने टन, और नमक भी रोजाना कितना उठता है वो भी लिखा है। करोड़ों मन अनाज और लाखों मन नमक है। पूरा भजन पढ़ो समझ गया ना। तो ऐसे भरत जी, ऐसे भरत जी ऐसे को वैराग्य के समझाना है ना। देखो ज्ञानी बंधे न कर्म के से, बोलो میں نے سمجھا کہ دوہا ہوگا اس لیے ویسے بولا تھا. کیا جانی بندھے نا کرم سے سب کرم کرتے بھوگتے, یہ جان کی سامرتھ اربئی راگ سے بدل جانی ہے. ارتھ کرنے کی ضرورت نہیں نا. اب بنارسی داس جی نا دیکھو اتنا دو لائن کا تھند تھا سنسکرت میں بھی اور دو لائن اپن نے ہندی میں نپٹا دی, ایک شبد بھی ایسا نہیں بچا جو اپنے سندھ میں نہیں آیا ہو, اور بنارسی داس نے اتنے سندھ لکھ دیے اس کا. وہ تو اپنے میں مست تھے, انہیں اسے مطلب نہیں تھا کہ وہاں دو لینے اور ہم 37 لینے کیوں لکھ رہے ہیں. آگے سمجھ میں تو لکھتے گئے اور جہاں نہیں آئی تو 10-10 چھند بھی چھوڑ دیے. ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. کیا امر چندر نے بھی ایسا کیا, پہلے منگلا چند کے چھند لکھے اور جو اتنی مہتوپورن گاتھائیں تھیں سٹویں ساتویں گیارہویں ان کے بیچ میں ایک بھی چھند نہیں. بارہویں گاتھا کے بعد میں سے چھند لکھا, بولو پہلی سے لے کے بارہویں گیارہویں گاتھا تک ایک کلش نہیں لکھا. اب اچھائی برائی من کھوجنا, فیکٹ کھوجنا, اور پھر پدم پرم ملدھاری دیو کو دیکھو تو ہر چھند کے بعد ایک چھند تو لکھیں گے ہی لکھیں, چاہے جو کچھ ہو جائے, چاہے اس میں ضرورت ہو چاہے نہیں ہو. دیکھو کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, انہیں لکھے تو لکھے, تمہیں کیا تکلیف ہے, ہمیں تکلیف ہے نا, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گاتھا ہم لوگوں نے ایک سی چل رہی ہے چھ, اب اس میں ہم چاہتے تھے کہ اکٹھا چھ کو بلک کر کے اکٹھا ارتھ کر دیتے, اکٹھا سمجھا دیتے, اکٹھا بھاوارتھ لکھ دیتے. اب نہیں کر سکتے جبکہ ہم نے پروچن سار میں سمے سار میں ایسا کیا. آپ نے کہا ٹیکا کو بھی ہم نے جوڑ دیا, ایسا کیا نا آپ نے دیکھا ہو دھیان سے, تو اسے نہیں جوڑ سکتے. اب دو گاتھائیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف ایک شبد بدلا ہے. پہلے میں لکھا راگ دویش پریہارے اور باقی گاتھا بالکل ایک سی, اور دوسری گاتھا میں لکھا وکلپا بھاوے سرو وکلپا بھاوے رکھ دو. راگا جی کے پریہار میں جو ایسی دشا ہوتی ہے تو وہ ہے, وہ کیا ہے, یوگ بھکتی ہے. اور پھر لکھا وکلپ کے ابھاو میں ایسی دشا ہوتی ہے تو یوگ بھکتی ہے. اب بالکل تین پد بالکل ایک سے, صرف دو ہی. اب ہمارا کام اتنے سے چل جاتا کہ ہم کہتے راگا جی کے پریہار کرنے والے اور سرو وکلپوں کا ابھاو جن کے ہو گیا ہے, ایسے جیو جو آتما کا دھیان کرتے ہیں بے یوگ بھکتی والے ہیں. ہو جاتا ہے نا کام دو لین میں ہمارا. اس لیے ہم کو یہ الٹا لکھنا پڑا ان دو گاتھاؤں میں کوئی انتر نہیں ہے, سر ایک شبد چھوڑ دیں تو دونوں کا ایک سا ہی بھاو ہے. کیا اور اس کا یہ ارتھ ہے, اس کا یہ ارتھ ہے, بہت ایسا لکھنا پڑا. تو یہ تو ہر ایک کے نیچر کی پرکرتی ہے. میں نے ایک لکھا ہے اس میں سمے سالن سیلن میں ایک جگہ کہ امرت چندر کی بدھی پر جب ہردے قابض ہو جاتا تھا, بدھی ہار جاتی تھی اور ہردے جیت جاتا تھا, تب بھی کلش لکھنے لگتی تھی, اور جب بدھی حاوی ہو جاتی تھی اور ہردے ہار جاتا تھا نا تو بھی گدے لکھنے لگتی تھی. اب وہ اتنا گمبھیر پرکرن تھا, پہلی گاتھا سے گیارہویں گاتھا تک پورا سمے سارے انہیں بتانا تھا, تو انہیں ایک بھی چھند لکھنے کا بھاو نہیں آیا. اور جب وہ ویسا بارہویں گاتھا میں ہلکا ویسا ہے نا, کیسا کہ ویوہار کی بھی اپیوگتا ہے, کہیں کہیں جنمانی میں بھی ویوہار کہا ہے, ایسا ایسا ہے نا, وہ پریوجن بھوت ہے, ایسا ایسا ہے, تب انہوں نے ویوہار نیا دبی پد پراگ پد ابھیام وہ کلش لکھنے کا بھاو آ گیا انہیں. اگر آگے ایک ایک گاتھا میں تین تین چار پانچ پانچ کلش, اور ایک گاتھا میں تو 20-22 کلش ہیں. کون سی گاتھا ہے بولو, کرتا کرم ادھکار ہے نا, ایک کیسے بندھو نا تتھا پرس سے. है ना, ऐसी उनकी थी। अब देखिए बनारसी दास ने बहुत विस्तार से लिखा, इसलिए मैंने पीछे छोड़ा है, इसको अपन पढ़ते हैं बनारसी दास वाले को। महिमा सम्यक ज्ञान की ये तो सम्यक ज्ञान की और वैराग्य के बल की महिमा है कि क्रिया करते हुए भी कर्म फल नहीं, कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता उसे, है क्रिया करत फल भुंगते, माने उनका कर्ता भी है और भोगता भी है, फिर भी कर्म बंद नहीं होता। तो छंद का अर्थ तो आ गया, उनका भी काम एक दोहे से चल गया। अब तो जो उनका मन रमा और जो पांडे राजमल जी ने जितने उदाहरण देने के कलश टीका में उस बात को स्पष्ट की, तो उनने और दो चार अपनी तरफ से जोड़ के बात करी है। ऐसे पढ़ो शांति से, कोई अच्छी तरह से आगे पढ़ने वाला हो ना, ये जो अच्छी तरह से जो एक तीसरा सवैया पढ़ सकता हो मनन कवित है ना, वह है ना कुंवर सिंह बेचैन जैसे पढ़ता है कभी सम्मेलनों में, वैसे पढ़ो अच्छा कोई हो गल वाला। तो आप लोग भी अपने गुनगुनाना कम से कम, देखना छंद को। हाँ बढ़िया है, देखो
जैसे भूप कौतुक सर्प करे नीचे कर्म कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है, जैसे विभचारिणी विचारे विभचार वाको जा रही तो प्रेम भर था, जैसे धाई बालक चुंधाई करे लाली पाली जानता ही और को जर पीवा के अंक है, तैसे ज्ञान बनते नाना भांति कर तूती था कई आको भिन्न माने आते निकलंक है, जैसे निशिवार पंकज कहावे पहनावा के रिंग पंक है, जैसे मंत्रवादी विषे धर सो गहावेगा मंत्र की शक्ति वाक्य बिना विषे रंक है, जैसे जीव गहे जी के नाम रहे रुखे पानी में कनक जैसे थाई तो अटंक है, जैसे ज्ञान वंत नाना भांति कर तूटी था क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है।
अब देखिए दो छंद है, दोनों छंदों की अंतिम दो पंक्तियां बिल्कुल एक सी हैं, इसमें भी देखो कौन सी, तैसे ज्ञान बंत नाना भांति कर तूत ठाने जाने ताई क्या क्रियासों भिन्न माने याते निकल अंक है, नीचे भी है ऊपर भी है दोनों के अंत में, निष्कर्ष तो ये है। अब उन्होंने छह उदाहरण दिए हैं तो इसलिए वे तीन छंद, पहले में तीन और दूसरे में तीन उदाहरण दिए हैं और जिससे ये बात सिद्ध की है उनने कि ऐसा लोक में संभव है। अपन कहते हैं कि क्रिया क्रिया करता और भोगे, करना क्रिया दिखाई दे करता और भी दिखाई दे भोगता भी दिखाई देवे फिर भी वो निष्कलंक है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कैसा, जैसे बैजादा लिख रहे थे पंचासी का अगनशीलन, तो उसमें जो छंदों का उद्धरण कर देते थे तो फिर अर्थ नहीं लिखते थे, समझते थे सब अर्थ समझते ही है, उन्होंने कहा दादा ये क्या करते हो अर्थ लिखो कौन समझता है, इसमें आपको अर्थ लिखना पड़ेगा क्या, ये जो 400 वर्ष पुरानी हिंदी कौन समझता है, जैसी संस्कृत जैसी है उनके लिए। तो जैसे भूप कौतक करे स्वरूप करे कौतक स्वरूप करे नीच कर्म, जैसे कोई राजा ने कौतूहल के बस होकर नीच कर्म किया, जैसे कभी कभी नेता लोग करने लगते सफाई का काम, गांधी जी भी करते थे ना, लेटिन सफाई करते जाते थे हैं, वे हड़ताल करते थे भंगी, भंगियों से कहते थे तुम हड़ताल करो ऐसा नहीं, और फिर वो जाके सफाई करते थे कि लोगों से भंगियों के प्रति घृणा कम करने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि यदि कोई हड़ताल करता है तो तुम्हें उसका सामना कैसे करना चाहिए, नहीं तो वे अनाप शनाप मांगे रखेंगे और तुम्हें माननी पड़ेगी, वो तुम अपने हाथ से काम कर लोगे तो काम चलेगा, है ना। ऐसे राजा किसी नाटक में समझ लो, जैसे कोई भूप कौतुक स्वरूप कौतूहल बस करे नीच कर्म, लेकिन सारी दुनिया उसे कौतुकी कहा रहे, उसे कौतुकी कहते हैं, पर कोई उसे रंक नहीं मानता। एक उदाहरण अब ऐसे लगाओ, तैसे ज्ञानवंत नाना करकुतूति करे क्रियासों भिन्न माने आते निकलंक है। अब इसको अपन को क्या करना चाहिए कि ये जो लाइन है ना, इन्हें दो दफे दोहराई है, अपन को आठ दफे दोहराना चाहिए। कैसे दोहराओगे पढ़ जाओ, तुम दोहरा सकते हो? तो सुनना आप लोग ध्यान से, देखो बनाना चाहिए, देखो कहते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनना, देखना क्या 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 करता है जी। ये पढ़ देगा तो मैं आज से सर्टिफिकेट दे दूंगा। बोल बोल मतलब हाँ
फल फल
पढ़ पढ़।
जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीचे कर्म कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है, तैसे ज्ञानवंत नाना भक्ति कर तुटि ठन क्रिया को भिन्न माने अति निकलंक है।
फिर पढ़वा ही पढ़ो।
जैसे विचारिणी विचार विचार वाको जार सीतो प्रेम भर तसो चित भंग है, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठन क्रिया को भिन्न माने अति निकलंक है। जैसे राई बालक चुंदाई करे लालीपा जाने ताही और को जदा पीवा के अंक है, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तो तीसाने क्रिया को भिन्न माने अति निकलंक है। जैसे निशिवार कमल कहे पंख में ही पंकज कहावे पहनावा के, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुटि ठाने क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है। जैसे मंत्रवादी विचरण सो गावे गात तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुटि ठाने क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है। जैसे जीव गहे चिकना ही रहे रुखे अंग पानी में कनक तैसे काई तो आतंक है, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुटि ठाने क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है।
हो गया समझ में आ गया आज सब? अभी अर्थ तो अपन बताएंगे, चिंता मत करना। अब इनने दो जगह लिखा, जब आठ जगह लिखना चाहिए था तो उनने आठ जगह की जगह दो जगह कर दिया। एक जगह क्यों नहीं किया, एक जगह कर देते, क्योंकि सात को एक साथ बोलो और फिर आठवां बोलो, सात माने छह, छह को एक साथ बोलो और फिर आठवां बोलो, समझे ना? जब उनने तीन के बाद एक रख दिया तो हम छह के बाद ही तो रख सकते हैं ना, तो क्या दिक्कत हो जाती? वे तो ऐसा ही करते, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि छंद वो आठ आठ लेन के होते कि चार चार लेन के होते हैं, इसलिए दो दफे उन्हें रखने पड़े। हम चाहें तो अर्थ करते समय हटा सकते हैं, जब हम निष्कर्ष निकाल के लिखें तब उसे हटा सकते हैं। उन्हें तो दो की मजबूरी थी, गद्य वाले को तो मजबूरी नहीं है ना। यानी ये जगत के सामने बहुत बड़ा प्रश्न, ये बनारसी दास के वो छंद हैं जिन्हें बनारसी दास जी इतने लोकप्रिय छंद थे कि आगरा की गलियों में लोग वैसे गाया करते थे जैसे कि आज सिनेमा के गीत बच्चे गुनगुनाया करते हैं गलियों में, ऐसे गाया करते थे। ये छंद कमजोर हैं, ऐसे छंद बनाकर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते क्या? केसरिया चावल लगवाने की क्या जरूरत है? देखो जैसे भूप को जो हो गया ना, जैसे भी विचारनी विचारे भी विचार बाको जार ही सो प्रेम भरे ताके चित्त। अभी बनारसी दास लिख सकता है, मानो सिंगार रस का कवि था ना, इनकी एक किताब थी जो उन्होंने गोमती में बहा दी थी। वो उस जमाने में पैदा हुए थे बनारसी दास जी, जब तक इस एक रीति काव्य नहीं लिखा जाता था तब तक किसी को कोई कवि नहीं मानता था, आचार्य नहीं मानता था, ये है ना, आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, कौन सी शताब्दी के है ना, बनारसी दास के जमाने के रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल समझे क्या समझे, जो एकदम दास जो पढ़े होंगे थोड़े वो जानते हो कि नहीं, रीति काव्य उसे बोलते हैं, ये छंद, छंदों का स्वरूप क्या है, अलंकारों का स्वरूप क्या है, इसकी किताब लिखे, इसका इसकी जो किताब लिखे उसे रीति काल के आचार्य कहते थे, उन्हें आचार्य कहते थे। आचार्य कौन है कि छंद कैसे बनाना चाहिए, कौन से छंद में कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, कौन मात्रक छंद है, कौन वर्णक छंद है, समझे ना, तो ये इसमें कौन कौन से क्या अलंकार हैं, इनका पूरा वर्णन वो करते थे। तो उनके करने की विशेषता क्या थी, जो मैं बताऊं आपको थोड़ा रीति काल की, कि जब वो किताब लिखते थे तो आर्या छंद लिखें, वो तो आर्या छंद की परिभाषा लिखें, तो वो आर्या छंद में ही लिखेंगे, है? क्या समझे, और श्लोक की परिभाषा लिखें तो वो अनुष्टुप छंद में ही लिखें, श्लोक में ही लिखेंगे, समझ रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा, किसको पता था हाथ उठाओ, जो हुए पता है, देखो एक, एक हाथ उठा पीछे, जैसे यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये पी अष्टादश द्वितीये चतुर्थी पंचदश सार्या, तो ये छंद भी आर्या है जिसमें परिभाषा लिखी। अब श्लोक का, इस लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, इस लोग उसे कहते हैं जिसमें हर छठवा अक्षर गुरु हो और पांचवा अक्षर छोटा हो, माने उसी छंद में, यदि वे मनन कपत की परिभाषा लिखेंगे तो मनन कपत में लिखेंगे। अच्छा फिर उसका उदाहरण देंगे, उदाहरण देंगे तो वो खुद ही बनाएंगे, किसी दूसरे का नहीं देंगे, जैसे अपने लगा तुलसीदास दोहा अपने लिखा हो, तुलसीदास का दोहा बोल दिया, मनन बस वह सब ऐसा नहीं, वे दोहा भी उदाहरण के लिए भी दोहा खुद बनाएंगे, तो ऐसी किताबें उस जमाने में लिखेंगे। ये रामचंद्रिका है ना, रामचंद्रिका का नाम सुना, किताब का नाम है, उसमें दुनिया में जितने छंद हो सकते हैं तो सब छंदों का प्रयोग किया, आचार्य था ना केशव, तो आखिरकार बाद में वो इतनी रूखी हो गई उस छंदों के आग्रह से कि लोग कहने लग गए कि केशव का काव्य काव्य कला का कठिन प्रेत है, भूत है, भूत भूत चढ़ गया था उन्हें, क्या कि हर छंद लिखना और हर अलंकार बताना, अब उनका कोई रस नहीं, मजा नहीं आया, नीरस काव्य हो गया उनका काम में, कि कैसा कि बगीचे का वर्णन कर रहे हैं, अब बगीचे का वर्णन तुमने और भी कहीं पढ़े होंगे, लेकिन केशव को पढ़ो तो क्या लिखते हैं, पांड अर्जुन भीन महामति देखो पांडव की प्रतिमा से लेखो, क्या है सर कि वो बगीचे में अर्जुन नाम के वृक्ष थे और भीम नाम के वृक्ष थे, इससे मालूम पड़ता था कि पांडवों की प्रतिमाएं लगी हैं। अब अर्जुन वृक्ष आज तक किसी ने देखा नहीं, अर्जुन की चाल तो आती है वो, समझे ना, और भीम नाम का वृक्ष भी होता होगा, जब सीता फल होता है और राम फल होता है, समझ गया ना, तो वो अर्जुन नाम का जो वृक्ष है वो बिल्कुल जंगल में होता है, बिल्कुल रूखा रूखा होता है, इसे हमारे बुंदेलखंडी में कुआं बोलते हैं, कुआं जानते हो, चंदेरी के पास जंगलों में है बहुत, बिल्कुल रूखा, न पट्टे ढंग से दिखते हैं ना ये दिखते, बिल्कुल ऐसा है, मैंने देखे वो जंगल में अर्जुन नाम के वृक्ष, अब उनको उसमें शोभा दिख रही, उन्हें गुलाब का पौधा तो नहीं लगाया, चमेली भी बताई, क्यों अर्जुन और भीम को उन्हें अलंकार बताना था, क्या शब्द अलंकार, कि अर्जुन और भीम इनके लिए उन्होंने ऐसे लिख दिया, तो वो उनकी पद्म रीतिकालीन आती थी, ये बनारसी दास रीतिकालीन थे, वो उन कवियों की ये विशेषता है जो वो इस तरह के मतलब प्रयोग करते थे। अब इस छंदों में दो छंद पड़े, कौन सा अलंकार है, दृष्टांत माला, दृष्टांतों की माला खड़ी कर दी, छह दृष्टांत दे दिए एकदम, है ना, दृष्टांतों की माला देना जा रहे, कैसे कैसे ऐसे जैसे 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 जैसे, समझिए ना, दृष्टांतों की ये माला, ये अलंकार है, समझे ना। जैसे अभी इसका अर्थ कर रहा था मैं कि जो कोई व्यभिचारिणी औरत है वो किसी दूसरे से प्रेम करती है और पति से प्रेम नहीं करती है, और है पति के साथ, पति की गोद में बैठी है। अब यही कल्पना कोई कर सकते हो, अध्यात्म के ग्रंथ में लिख सकते हैं, लेकिन उसका चित्त जो है अपने प्रेमी की तरफ लग रहा है। देखो, जैसे विविचारणी विचारे विविचार बाको, वो प्रेमी के साथ जो उसने रंग राग रंग किया था, भोग भोगे थे, वो उनका विचार कर रही। देखो, जैसे विविचारणी विचारे विविचार बाको, खुद का विचार पे विचार करती है वो, जार ही सो प्रेम, और अपने यार, जार माने यार, यार माने आज की भाषा में प्रेम, लवर, जार ही सो प्रेम और भरितासो चित्त बंक है, तो पति के से उसके चित्त में टेढ़ापन है, है ना। जैसे भी विचारणी विचारे भी विचार बाको, जार ही सो प्रेम भरितासो चित्त बंक है। आगे लिखा ना, देखो अभी ये इसमें भी कह सकते थे, जैसे धाई बालक के चुंगाए लाल पाली, जाने ताई और सो को जदपि बाके अंक है, वो बच्चा उसके धाई मां होती है ना, उसकी गोद में है और उसका दूध पी रहा है, फिर भी उसका प्रेम जो दूर घर पे पड़ा आपका बच्चा है उसके प्रति है। अरे संबंध इसी की हालत बता रहे, संबंध इसी रूप में किसे दे रहे, व्यभिचारिणी औरत से है? कोई अच्छी सीलवती सीता नहीं मिली उन्हें, और उधाय माता से असली माता नहीं दिखी कहीं। देखो तीन बार समझ में आ गया ना, जैसे भूप कौतुक स्वरूप कर नीच कर्म, कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है, जैसे विविचारणी विचारे भी विचार बको, जार ही सो प्रेम भरितासो चित्त बंक है, जैसे धाई बाले के चुंघाई, चुंघाई माने दूध पिलाना, चुंघाई करे लाल पाली, जाने ताई और को तदपी बाके अंक है, गोद में दद्दू कह जानते हैं, तैसे ज्ञान बनते नाना भांति करे तूती करे, क्रिया सो भिन्न माने, अपने को क्रिया से भिन्न मानते हैं, जाते निकलेंगे हैं। अभी अभी लगा दो आरोप, स्वामी जी इसका अर्थ भी करें तो अभी उन पर देखो देखो ऐसे गंदे उदाहरण देते हैं, ऐसे गंदे उदाहरण देते हैं, ऐसे गंदे उदाहरण देते हैं। अरे वे तो उस छंद का अर्थ कर रहे हैं जो बनारसी दास ने लिखा है, एक कवि ने लिखा क्या, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सारी के भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये छंद कांच के मंदिर में इंदौर में लिखा हुआ है, जो कांच का मंदिर उन्होंने बनवाया होगा ना, तो तब वहां लिखा देगा। गुरुदेव श्री वहां इंदौर गए तो कांच के मंदिर दर्शन करने गए, जैसे निगाह डाली तो वो उस पर चली गई, तो उन्हें अच्छा लगा, मैंने उन्हें ये पता नहीं किसने लिखा है, तो कांच के मंदिर में लिखा है, और उनने आगे अपना प्रवचन में कह दिया कांच के मंदिर में ऐसा छंद लिखा था कि चक्रवर्ती अपने जो छंद की विभूति है उसे कैसा समझते हैं, कौआ की बीट, माने बीट माने, तो उन्होंने बीट बीट समझाई, उन्हें गुरुदेव को नहीं समझ में आई होगी बीट क्या है, तो लोग मैंने समझाई कि भाई वो बीट होती है, बीट कौए की बीट होती है, कि बीट क्या, कि वो मल। अब अभी उस शुद्ध भाषा में बोलो जो अपन बोल नहीं सकते, समझा दिया होगा किसी ने। तो उनने वो अर्थ कर दिया कि इसके समान समझ गया ना, तो बस लोग उनके पास ही बढ़ दिया, चलिए जी ऐसा कह रहे जी ऐसा कह रहे जी ऐसा कह रहे जी। अरे फिर मैंने कहा किया, मैंने कहा किया, मैं और उसका और आगे अर्थ करता हूं, कौआ की भ्रष्टा क्यों लिखा, आदमी की लिख देते, आदमी की इतनी भी इज्जत नहीं है क्या, क्यों कि नहीं लिखा, कौवे की लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आदमी की रिश्ता किसी काम आ जाती है। क्या काम आती है, मेरे आज तक पता ही नहीं है। अरे कूकर सूकर से पूछो, आ जाती ना उसके काम। एक तो कौआ सबसे खोटा पक्षी बदराम है ना, आदमियों में कौआ और पक्षियों में कौआ, और वो पशु पशुओं में ख्यार, ये बदनाम है कि नहीं है। राधा नारायण राम नार प्रधुरता पक्षियों में जे, तो एक तो कौआ, फिर वो काला, फिर उसकी इतनी खराब बोली, और वो कौआ भी कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं है, इतने भी काम में नहीं है, तो उसकी भी बीट जो दुनिया में किसी काम नहीं आती, ऐसे पदार्थ से वो उपमा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बीट लिख दिया। क्यों कि बिल्कुल निरर्थक है। बोलो अब ये भाव को बताएं कि नहीं बताएं, ये जिसे वैभव तुम रुपया पैसा मान रहे हो, और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाए, तेरे बहुत प्रेम से बात करते थे, तत्व की बात सुनते थे, दूर से नमस्ते करते थे, पैर पड़ते थे, अब ये पैसा हाथ में आते ही तो एकदम क्या हो जाता है, ये सब समझ लो स्वरूप इसका क्या है। ये आंखों के रखे हाथ हाथ पे रखे आंगले समान है कि नहीं है, ये पुण्य के वजह से आया कि पाप के वजह से, कि जिनवाणी का समागम छूट जाए जिसके वजह से। क्यों देखो तैसे ज्ञान बंत नाना भांति करे तूत करे, क्रियासों भिन्न माने आते निकलंक है। अब दूसरे छंद का अर्थ कल टेम हो गया है।